होम रूल लीग आंदोलन। पिछले लेख में हमने अपने प्रवासी भारतीयों के गदर आंदोलन की चर्चा की थी। इस लेख में हम स्वराज के लिए स्वदेशी संगठनों के आंदोलन होम रूल लीग मूवमेंट की चर्चा कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक 6 साल की लंबी सजा काटने के बाद 16 जून 1914 को जेल से छूटे। कैद का अधिकांश समय मंडालय जेल वर्मा में बीता था। भारत लौटे तो उन्हें लगा कि वह जिस देश को छोड़कर गए थे वह काफ़ी बदल गया है। स्वदेशी आंदोलन के क्रांतिकारी नेता अरविंद घोष संन्यास की राह पकड़ पांडिचेरी पहुंच गए थे और लाला लाजपत राय अमेरिका में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत के विभाजन, स्वदेशी आंदोलनकारियों पर अंग्रेजी हुकूमत के दमनकारी प्रहारों और 1909 के संवैधानिक सुधारों के कारण नरमपंथी राष्ट्रवादियों की निराशा के सम्मिलित सदमे से अभी तक उभर नहीं पाई थी। तिलक ने सोचा कि सबसे पहले तो कांग्रेस में फिर से शामिल हुआ जाए और बाकी गर्मपंथियों को भी इसमें घुसाया जाए। तिलक को यह विश्वास हो चला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन चुकी है और बिना इसकी इजाज़त के कोई भी राजनीतिक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। नरमपंथियों को समझाने बुझाने, उनका विश्वास जीतने तथा भविष्य में अंग्रेजी हुकूमत दमन का रास्ता न अख्तियार करें, इस उद्देश्य से उन्होंने घोषणा की कि मैं साफ साफ कहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था का सुधार चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहां के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि भारत के विभिन्न भागों में जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं न केवल मेरी विचारधारा के विपरीत है, बल्कि इनके कारण हमारे राजनीतिक विकास की प्रक्रिया भी धीमी हुई है। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और भारतीय जनता से अपील की कि वह संकट की घड़ी में अंग्रेजी हुकूमत का साथ दे। नरमपंथी खेमे के तमाम नेता अब महसूस करने लगे थे कि 1907 में सूरत में जो कुछ उन्होंने किया वह गलत था। ये कांग्रेस की अकर्मण्यता से भी क्षुब्ध थे। इन्हें तिलक की अपील बहुत भाई। इसके अलावा इन पर एनी बेसेंट का लगातार दबाव पड़ रहा था कि देश में राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन को फिर से तेज करो। एनी बेसेंट अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई थी। 1914 में वह 66 वर्ष की थी। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, जहां उन्होंने स्वतंत्र चिंतन फ्री थाट, उग्र सुधारवाद रेडिकलिज्म फबियनवाद और ब्रह्म विद्या थियोसॉफी के प्रचार में हिस्सा लिया। 1893 में वे भारत आई। उद्देश्य था थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करना। उन्होंने मद्रास के एक उपनगर IDR में अपना दफ्तर खोला और 1907 से ब्रह्म विद्या थियोसॉफी का प्रचार करने लगी। थोड़े समय में ही उन्होंने समर्थकों की एक बड़ी संख्या तैयार कर ली। इसमें ज़्यादातर उन समुदायों के शिक्षित व्यक्ति शामिल हुए थे जिनमें अभी तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं हुआ था। 1914 में एनी बेसेंट ने अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया और आयरलैंड की होम रूल लीग की तरह भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि इसके लिए कांग्रेस की अनुमति और गर्मपंथी आंदोलनकारियों का सहयोग लेना जरूरी है। गर्मपंथियों का सहयोग पाने के लिए उन्हें कांग्रेस में शामिल करना जरूरी था। एनी बेसेंट कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं को समझाने लगी कि वे तिलक व उनके गर्मपंथी सहयोगियों को कांग्रेस में शामिल होने की इजाज़त दे दें, लेकिन 1914 के कांग्रेस अधिवेशन ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। फिरोज शाह मेहता और बम्बई के उनके नरमपंथी समर्थकों ने गोखले और बंगाल के नरमपंथियों को गर्मपंथियों को बाहर रखने के लिए मना लिया। इसके बाद तिलक और एनी बेसेंट ने खुद अपने बूते पर राजनीतिक आंदोलन चलाने का फैसला किया और साथ ही साथ वह कांग्रेस पर दबाव भी डालती रही कि वह गर्मपंथियों को पुनः अपना सदस्य बना लें। 1915 के शुरू में एनी बेसेंट ने दो अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन जोड़ छोड़ छेड़ दिया। जनसभाएं और सम्मेलन आयोजित किए। उनकी मांग थी कि जिस तरह से गोरे उपनिवेशों में वहां की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, भारतीय जनता को भी स्वशासन का अधिकार मिले। अप्रैल 1915 के बाद एनी बेसेंट ने और भी कड़ा और जुझारू रुख अख्तियार किया। इसी बीच लोकमान्य तिलक ने भी अपनी राजनीतिक गतिविधि शुरू कर दी, लेकिन वे काफ़ी सतर्क थे। वे नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का नरमपंथी खेमा नाराज हो या कांग्रेस को यह लगे कि तिलक की गतिविधियां कांग्रेस की नीतियों से मेल नहीं खाती। उनकी दिली ख्वाहिश कांग्रेस में किसी तरह शामिल होने की थी। तिलक ने 1915 में पूना में अपने समर्थकों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें यह फैसला किया गया कि ग्रामीण जनता को कांग्रेस के उद्देश्यों और उसकी गतिविधियों से परिचित कराने के लिए एक संस्थान का गठन किया जाए। इस फैसले के बाद उसी वर्ष अगस्त और सितंबर में महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों में जो स्थानीय संगठन बने, वे राजनीतिक गतिविधि को तेज करने के बजाय सारी ऊर्जा कांग्रेस में एकता स्थापित करने पर खर्च करते रहे। वे बराबर जोर देते रहे कि किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कांग्रेस में एकता बहुत जरूरी है। नरमपंथी कांग्रेस के कुछ रूढ़िवादियों पर दबाव डालने के लिए तिलक ने कभी कभी धमकी का भी सहारा लिया, पर उन्हें विश्वास था कि अधिकतर नरमपंथी नेताओं को वह समझा बुझाकर मना लेंगे।